الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أسلم في الوجود صاحب اللواء الحمدي ومقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب الأصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله غني حميد صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد آئیڈیل لائف نمونۂ حیات کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری نویں کڑی ہے بات اختتام تک آ رہی ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دین کو سابق نہ سمجھے دین کو زندگی کا جز سمجھے کوشش یہ کریں کہ دین جو ہے ہماری زندگی کا پارٹ ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم دین سے الگ نہیں رہ سکتے اور دین صرف تین چار دن کے دنوں کا نام نہیں ہے صرف مسجدوں کا نام نہیں ہے صرف امام بارگاہوں کا نام نہیں ہے دین ایک مکمل نظام حیات ہے کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے ہمارے لیے نمونوں کی ضرورت تھی ذات پروردگار نے کہا اے انسان تجھے نمونہ چاہیے تجھے مینٹور چاہیے تجھے آئیڈیل چاہیے یہ آئیڈیل ہیں یہ مینٹور ہیں یہ نمونے ہیں ان نمونوں کو دیکھتا چلا جا اور تمہارے لیے بہترین کامیاب نمونے ہیں یہ تمام نمونے بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کے ہونے پر کامیابی نہیں ہوتی اللہ کے ہونے پر کامیابی ہوتی یعنی ان تمام نمونوں کا اگر نچوڑ پیش کیا جائے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے دنیا کے سامنے مال و دولت و جاہ و حشم و اولاد یہ تمام چیزیں یقیناً مینس ہیں ضرورت ہیں لیکن یہ ہونا دلیل کامیابی کی نہیں ہے کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اگر ذات پروردگار آپ کا ساتھ ہے اس کی رضا ساتھ ہے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں حضرت آدم نمونہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے علم کے ذریعے سے وہ مرکزیت حاصل کی کہ ملائکہ کو سجدہ کرنا پڑا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آدم نمونہ اس لیے بن رہے ہیں کہ نالج ان کے پاس اگر تم چاہتے ہو مرکزیت حاصل کرنا نمونہ بننا چاہتے ہو مینٹور بننا چاہتے ہو آئیڈیل بننا چاہتے ہو آدم کی طرح تو ہم علم حاصل کرو، علم کے حصول میں پڑ جاؤ، علم کے ذریعے سے تم مرکز تک پہنچتے ہو. اور یہ بھی مان لو کہ آدم نے دوسری جو خطائیں کی ہیں اس کے ساتھ فوراً ہی یہ کہہ دیا کہ مالک تو ہمیں بخش دے، فوراً یہ بھی سکھایا کہ جہاں انسان غرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی انسان اشتباہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، اس وقت آئی ایم سوری کہنا، معاف کر دو کہنا، خواہ وہ اپنے سے سب آرڈینیٹ، ہم اپنے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے بھائی کے سامنے اگر غلطی ہوئی ہے اس سے معافی چاہیں، بیوی کسے غلط، آپ بیوی کے سامنے یا بیوی سے متعلق کوئی غلطی کر چکے ہیں، آئی ایم سوری کہنے میں مردانگی آپ کی ختم ہونے والی نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ تمام تاریخ کے تمام ان نمونوں کو اپنی زندگی میں اپنا کے بتایا کہ دیکھو انبیاء کی پوری زندگی ایک مرکز پر جمع ہو رہی ہے. خدا نے کہا کہ اگر آدم کو دیکھنا ہو تو یہیں دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو تو یہیں دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہو تو یہیں دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو یہیں دیکھو، ان کے پاس سارے نمونے ہیں. لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم نے کل مولا امیر المومنین اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی عجل کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہماری ان کو دیکھ کر، چونکہ وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم بھی اسی طرح سے چلنے کی کوشش کریں، کاپی کرنے کی کوشش کریں. آج اور کر، آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ہے، کل انشاءاللہ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کی زندگی سے متعلق جو چیز اہم کہنی ہے کل یقیناً میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا. ماتم داروں سے بھی، میں بھی ماتم کر چکا ہوں، ماتم ہمارا جذبہ ہے، آزاداری ہماری رگی شہر شہر رگی حیات ہے. اگر آزاداری ہمارے سے نکال دی جائے تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں ہے. ماں ہر چیزی کے داریم از حسین داریم، امام خمینی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حسین کا صدقہ ہے. انقلاب بھی جو آیا ہے امام حسین کے صدقے کی بنا پر ہے. تو ہمارے پاس یہ انرجی، الیکٹرسٹی، یہ جو پاور جو ہمارے پاس موجود ہے وہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کل بھی انشاءاللہ، کل پورا ایک گھنٹے کی مجلس ہوگی، اس ایک گھنٹے کی مجلس کے بعد ماتم ہوگا، نہ کہ درمیان میں کوئی خلل اندازی ہو. ایک صلوات پڑھیے، محمد والے محمد برا امام حسن کی زندگی میں جو میں آج شب تین دن ایسے دن ہیں جہاں پر مومنین کثرت سے مجالس میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کتنا پاک خون تھا کہ مومن کو سونے نہیں دیتا. تو جل جا، مجالس میں جا، جلوس میں جا، شرکت کر، ماتم کر، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے حیات ہے اور اس سے تم زندگی بنا سکتے ہو. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ جو پریکٹیکل ہو اور آج سے ریلیٹڈ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم کو بہت اہم چیز ملتی ہے، اس کے بیان کرنے سے پہلے، عقیدہ ہمارا برادران اہل سنت سے ہم ذرا اوپنلی یہاں بات کریں گے. ہم لوگ امامت ہوا منصب نہیں سمجھتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نبوت اور رسالت الہی منصب ہیں، اسی طرح سے امامت بھی الہی منصب ہیں. نہ صرف یہ سمجھتے، جس طرح سے نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، امام بھی معصوم ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. اور جب یہ بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ اجزائے اصول میں، اصول دین میں ہم لوگ امامت کو مانتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں اگر اصول دین میں امامت کو ہٹا دیں، ہم مؤمن کہلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا وے آف اپروچ ہے. فرق آپ میں اور ہم میں یہی ہے، آپ کے ہاں امامت نہیں ہے، ہمارے ہاں امامت موجود ہے. اور یہ امامت ہمارا نہیں ہے، دیا ہوا اللہ کا عہدہ ہے. سن لیجیے ایک جملہ، بہت ہی اہم جملہ ہے، امامت نہ قابل نصب ہے نہ قابل غصب ہے، نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے. सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाजिल इमाम के लिए ये कहां से लफ्ज आए? कुरान ने दिए हैं, और इस कुरान के अल्फाज को समझने के लिए उस आयत को मशहूर सूरह बकरा की 124वीं आयत, इदिब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलमातिन फातम्महुन्ना काला इन्नी जायलक लिन्नास इमामा काला व मिन दुर्रियती काला ला यनालु अहदेद ज़ालिमी। परवरदिगार ये कहता है कि इब्राहिम और हमने इम्तिहान लिया इब्राहिम से, और इब्राहिम ने तमाम इम्तिहानों को कामयाबी से गुजारा। यानी अतम कहते हैं तमाम को, तमाम के माने अलियोम अकमल तो लकुम दीनकुम व दीनकुम व अतमम तो अलैकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती, तमाम तमाम के माने। मसलन पाकिस्तान में पासिंग मार्क्स या 33-35% हैं, मगरबी दुनिया में 50% हैं, 50% हैं, मगर तमाम के माने 100% है। यानी अगर कोई इम्तिहान में 100% लिया उसको अरबी में कहते हैं तमाम। चुनांचे वजू में दुआएँ मौजूद हैं, पानी देखा तो दुआ पढ़ो, हाथों को धोते हुए दुआ पढ़ो, कुल्ली करते हुए दुआ पढ़ो, उसी तरह से नाक को साफ करते हुए दुआ पढ़ो, चेहरे को धोते हुए दुआ पढ़ो, हाथों को धोते हुए दुआ पढ़ो, उसके बाद आखिर में सबसे आखिरी दुआ है परवरदिगार मेरा वजू ख़त्म हो गया, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका तमाम अल वजू, मैंने वजू तो कर लिया है मगर कामिल बनाना चाहता हूँ इस वजू को, इसलिए कि वजू के पीछे शरायत हैं। सिर्फ वजू चेहरे और हाथ धो लेने का नाम नहीं है, वो कंडीशंस जो हैं, जो शरायत मौजूद हैं, उस शरायत को पूरा करने का नाम है। तमाम के माने कंप्लीट, ठीक है। जब कंप्लीशन, खुदा ये कह रहा है कि हज़रत इब्राहिम से हमने इम्तिहान लिया, उन्होंने पूरे कंप्लीट इम्तिहान दिए, यानी 100% मार्क्स लिए। जब आखिरी मंजिल में पहुँचे तो खुदा ने उनको कहा मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूँ। तो अब यहाँ तक देखिए मौला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह इत्तखदा इब्राहिम और अब्दन कबल अन यतखदहु नबियन, इन्नल्लाह इत्तखदहु नबियन कबल अन यतखदहु रसूलन, इन्नल्लाह इत्तखदहु रसूलन कबल अन यतखदहु खलीलन, फलम्मा जअलहु खलीलन काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। अल्लाह ने इब्राहिम को पहले अब्द बनाया, अल्लाह की तरफ से जो पहला ओहदा है उसका नाम है अब्द है, फर्स्ट डिजिग्नेशन का नाम है अब्द, दूसरे ओहदे का नाम है नबी, तीसरे ओहदे का नाम है रसूल, उसके बाद या खलील है या खातम है, उसके आखिरी ओहदे का नाम है इमाम, आखिरी डिजिग्नेशन का नाम है इमाम। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है विलायत। विलायत के माने क्या है? जो क्लोजेस्ट होगा ज़ात परवरदिगार से, वो रिफ्लेक्ट कर सकेगा, वो मुनाकिस कर सकेगा सिफात जलालिया और जमालिया को। अगर अब्द नहीं हुआ तो वो नबी बन नहीं सकता, अब्द होगा वही नबी बनेगा। इसीलिए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो, अब्द बन गया, अब नबी बन गया। अब अगर कोई नबी है तो इसके माने के अब्द जरूर है। जो नबी है उससे मत पूछिए अब्द है कि नहीं है, जो रसूल है वो अब्द भी है नबी भी है, जो इमाम है वो अब्द भी है रसूल भी है और नबी भी है। जिस तरह से अगर आप कोई पूछे ए लेवल्स वाले से पूछे कि तूने पीएचडी की, तो सही सवाल है। पीएचडी से वाले से मत पूछे कि तूने ए लेवल किया कि नहीं। इमाम से मत पूछिए कि तू नबी है या रसूल है कि नहीं है। इमामत एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ का नाम है, और रिसालत लॉ को रिसीव करने वाले का नाम है। कानून को जो रिसीव करता है वह नबी, कानून को जो चलाता है वह रसूल। रसूलुल्लाह रसूल भी थे, कानून को उन्होंने भी चलाया भी था। जिस कानून को उन्होंने चलाया था उसका नाम है मदीने में रसूलुल्लाह ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया, और जिस सिस्टम को चलाया का ये सिस्टम अगर कोई चला सकता है, मन कुंत मौला फहाद अलीयुन मौला। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाली मोहम्मद वाजिल, ये हमारे पास थ्योरी है। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए, एक है आर्च ऑफ डिसेंशन, आर्च ऑफ असेंशन। आर्च कहते हैं कौस, ये जो कमान है ये कमान आहिस्ता आहिस्ता से बुलंद होती है। अगर प्लेन में आप बैठे 1000 किलोमीटर 1000 फीट 2000 फीट बढ़ते 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 ऊपर चला जाता है 40,000 फीट। जब नीचे से ऊपर आता है तो आहिस्ता 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 बुलंद होता है, उसके बाद एक लकीर बन जाती है। जब लकीर बन जाती है तो क्रोजिंग स्पीड है, ना नीचे आता है ना ऊपर जाता है, एक ही स्पीड जाता है। इसी तरह इंसान का कमाल भी शुरू होता है अब्दियत से, अब्द के बाद नबी बनता है, रसूल बनता है, जब आखिर में चले जाता है तो एक ही स्पीड है, एक ही क्रूज है, वो अव्वल भी मोहब्बत है, औसत भी मोहम्मद है, तो सब एक ही जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आइए, तो हमारे पास फजीलत इमाम हसन और इमाम हुसैन में फर्क नहीं है। इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की, ये सवाल गलत है। अगर हुसैन की जगह इमाम हसन होते तो जंग करते, इमाम हसन की जगह इमाम हुसैन होते तो सुलह करते। यहां पर जो बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, इस्लाम दीन जंग नहीं है। आज जो वेस्टर्न कंट्री बहुत ज्यादा अब्यूज कर रही है लफ्ज जहाद को, उसको आज अच्छी तरह से समझ के उठे, खुसन नौजवान और खुसन वो जवान जो बे अख्तियार दूसरे के टोली बन रहे हैं और दूसरे के इशारे पे चल रहे हैं, उनसे गुजारिश है। जहाद इस्लाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, कुरान में जहां नमाज का इस्तेमाल हुआ है, रोजे का इस्तेमाल हुआ है, जक़ात का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह जहाद का भी इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। जहाद के माने क्या हैं? जहाद के माने वॉर नहीं है, जंग नहीं है। जहाद के माने स्ट्रगल, कोशिश, सई, यानी स्ट्रगल करना इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये हदीस है ये नहीं है, मगर अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है उसको बयान करना चाहिए। इंसान क्या है, हयात क्या है? अल हयात दो चीजों से बनी हुई है, अकीदतुन व जहाद, दो चीजों से बनी हुई है। ये अकीदा एक है, आइडियोलॉजी चाहिए और आइडियोलॉजी का डिफेंसिव मैकेनिज्म चाहिए, उसका दिफा करने वाला चाहिए। ये दो चीजें इंसान की हयात में है। मेरी तरह से अच्छी तरह से गौर करके आज मजलिस को समझे, इंशाल्लाह इमाम हसन को समझ सकेंगे। जिहाद के माने सिर्फ जंग नहीं है, स्ट्रगल है, कोशिश है। तो माने यह है कि इक्तसादी जिहाद, समाजी जिहाद, अकली जिहाद, ये तमाम जिहाद ही हैं। तो जब जिहाद यहां तक मानों में बताया गया, जिहाद असल में सबसे बड़ा जिहाद जो है इंसान का अपने नफ्स के साथ जंग करना है। रसूलुल्लाह के सामने सोल्जर्स आए, तलवारों से खून बह रहा था, रसूलुल्लाह ने फरमाया अलैकुम बिल जिहादिल अकबर, अभी जो जंग करके आए थे ये छोटी जंग है, तुम्हारे लिए बड़ी जंग मौजूद है। सब परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह अब तो जान मौत से खेल के आए हैं, ये बड़ी जंग समझ रहे थे हम। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ना, फकीला या रसूलुल्लाह वमा जिहादुल अकबर, वो मेजर जिहाद क्या है, मेजर स्ट्रगल क्या है? का अल जिहाद बिन नफ्स, तुम्हारे नफ्स से जंग करना जिहाद है। जिहाद में होता है, जंग में होता है, एनिमी इज नोन, यानी दुश्मन मालूम है किससे लड़ रहे हैं, टाइम इज लिमिटेड, टाइम मालूम है कब से कब लड़ना है। जैसे ईरान की जंग हुई 8 साल के लिए हुई, दुश्मन कौन था आपस में जानते थे। तीसरी चीज क्या है, जमान और मकान, मकान भी मालूम है कहां जंग करना है, लेकिन जिहाद नफ्स में ना टाइम लिमिशन है, कब से जिहाद, जब से पैदा हुए जिहाद, कब तक जिहाद, मरने तक जिहाद, किससे जिहाद, एनिमी कोई भी नहीं है, खुद दुश्मन मेरा नफ्स है, इससे जिहाद करना है। इससे जिहाद जो कर लिया कामयाब हो गया। इसीलिए मस्जिद में मेहराब है, मेहराब जानते हैं, मेहराब किसको कहते हैं, मेहराब हर्ब से है, हर्ब कहते हैं जंग को, मेहराब यानी जंग की जगह। मस्जिद में जंग की जगह कहां से आ गई, कहा इमाम जमा जब तक नफ्स पे जंग नहीं करेगा उस वक्त तक मेहराब पे नहीं आ सकेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल फर्ज, सरकार ने फरमाया हादा ने इमामा ने कामा और कादा, ये मेरे बेटा हसन हुसैन दोनों इमाम हैं, या खड़े रहें या बैठे। क्या माने कामा के माने, तफसीर किए उलमा ने कामा के माने जहाद, कादा के माने सुलह, अगर सुलह करें तो भी इमाम, जंग करें तो भी इमाम। इमाम हसन ने, मजलूम है बड़ा इमाम हसन, जिस तरह से तमाम इमाम मजलूम है, इमाम हसन भी मजलूम तरीन इंसान है, जिसको वो हक जो दे मिलना चाहिए था नहीं मिला, आज तक भी उनकी इस शख्सियत को उभारा नहीं गया, इस एंगल को जो उनका एंगल था। आज के जमाने के लिए इमाम की दो रहनुमाइयां मैं पेश करना चाहता हूं, उम्मीद है कि इसकी तरफ जरा सा तवज्जो करेंगे, खुसूसन हमारी कौम में जो हालत फ्यूचर में आने वाले हैं, अल्लाह जानता है क्या होने वाला है, लेकिन डेंजरस है। जो रिवायात भी हमारे पास जो हमारे पास बताई गई है लेस, उस लिहाज से ख़तरनाक ज़माना। मैं डराना नहीं चाहता मगर हालात ख़राब हो रहे हैं, उससे बेहतर तरीका यह है कि हम लोग ज़रा कनाअत की ज़िंदगी सीखें और अपने आप को मेंटेन करें, उन हालात के मुकाबला करें जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ ने उन सख्त हालात में गुजारने के लिए पहले से किस तरह से स्टॉक रखा था ताकि वह हालात का मुकाबला किया जा सके। जब यहाँ बात आ रही है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें पेश की। एक नंबर वन वो था आमी दस्तरखान। मौला ने आम एक दस्तरखान रखा था। दस्तरखान के माने ये है कि उसमें सबको गिजा दी जाए। ये खुसूस है अहले बैत के घराने का। यहां तक के इमाम बाकर अलैहिस्सलाम गुस्ल देते हुए इमाम सज्जाद को चीख मारते हैं। लोग परेशान हो गए, गुस्ल दे रहे हैं चीख करके क्यों रो रहे हैं। जब बाहर निकले तो किसी ने पूछा मौला आपने चीख करके क्यों गिरिया किया। मौला ने फरमाया कि लोगों ने सिर्फ बाबा के चेहरे पे पेशानी पर गट्ठे देखे, मेरे बाबा के पुश्त के गट्ठे नहीं देखे। क्या था वहां पर? का मेरा बाबा बोरियां भर भर के रोटी ले जाता था, गरीबों को खिलाता था। ये मसला जरा सा बारीक है। एक तो पहला यह है कि गरीब को खाना खिलाना चाहिए, यानी कोई भूखा इंसान सो रहा है तो मौला ने फरमाया है अगर कोई इंसान भूखा है तो समझो कि उसकी रोटी कोई छीन रहा है। तो खुदा ने रिस्क सबको दे दिया है। कहां परेशानी है? बांटने में परेशानी है, डिस्ट्रीब्यूशन में परेशानी है। सही तौर पर बांटा नहीं गया। अगर सही तौर पर बांटा जाए तो कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता। इमाम सज्जाद इमाम हसन का दस्तरखान क्यों था? सबसे पहला जर्ब था हुकूमत वक्त पर, यानी हुकूमत नाकारा हो चुकी है। अगर हुकूमत सही चलती तो यह दस्तरखान की जरूरत नहीं होती, सबको बराबर खाना मिलता था, सबको रिस्क बराबर मिलता था। आज अमेरिका में 60 मिलियन तक पहुंच गए हैं, यानी जो उनके पास कूपन दिए जा रहे हैं, पहले 30 मिलियन था, 40 मिलियन था, बता रहे हैं कि 60 मिलियन, 300 मिलियन का पॉपुलेशन है, 60 मिलियन को कूपन मिल रहा है खाने का। तो इसके माने के सिस्टम खत्म हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम यही बताना चाह रहे थे कि तुमने इमामत को खिलाफत को छीनना चाहा, छीनने के बाद वो नतीजा तुम नहीं दे सके जो हम दे सकते हैं। तुम्हारा फरीजा था कि सबको रिस्क बराबर मिलता, तुम नहीं दे सके। हम विलायत मुतलका रखते हैं, जो सामने हैं उनको भी रिस्क देते हैं, जो पीछे हैं उनको भी रिस्क देते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ना इससे बेहतर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक तो दस्तरखान है इमाम हसन। हम लोग बाज़ घरों में मैंने देखा कि सुन्नत होती है, बाज शायद रजब में या किसी महीने में करते हैं दस्तरखान है इमाम हसन, सुफरा जमाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ ये 22 रजब के कुंडे वगैरह सब ठीक है, लेकिन कब ठीक है? जब हम गरीब को उस दस्तरखान पे लाएं, जब मुस्ताहक को। अगर इमाम हसन के मानने वाले हैं, इमाम हसन के नाम पर दस्तरखान हो रहा है तो उस तक पहुंचना चाहिए जिस तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह बात याद रख लीजिए, सवाल करने वाला मुस्ताहक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, सवाल करने वाला भिखारी है। उसके लिए कुरान क्या करता है? फअम्मा सायला फला तनहर। सवाल करने को वाले को झिड़की मत दो, तो देना दे दो उसको, रुपया दो रुपये, 5 रुपये दे दो, नहीं दे सकते बोलो सॉरी माफ करना, लेकिन झिड़की दे करके उसको बढ़ाओ नहीं। अम्मा सायला फला तनहर, सवाल करने वाला मुस्ताहक नहीं है, मुस्ताहक सवाल नहीं करता। सबसे खतरनाक मसला है खुम्स जो निकल रहा है, किस तक पहुंचाना है हुक्म है? मुस्ताहक तक पहुंचाना है। क्या माने मुस्ताहक तक पहुंचाना है? यानी मुस्ताहक आपके दरवाजे पर आता नहीं है। तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, खुफिया सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए से मालूम हो वो कौन मोमिनीन हैं जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर वो इनका स्ट्रगल उनकी मेहनतें बार बार नहीं हो रही हैं, फिर भी परेशान हैं। उन परेशान मोमिनीन तक पहुँचने का नाम है मोहब्बत अहले बैत। बहुत ही अहम मौला इमाम हसन के दस्तरखान का नतीजा अगर हम लोग आइडियल मान रहे हैं इमामों को, अगर हम लोग उनको नमूने हयात मान रहे हैं, तो हम लोगों के पास हर महल्ले में एक ऐसा खुफिया सिस्टम होना चाहिए जिससे हमको मालूम हो कि हकीकत में डिजर्विंग सबसे ज्यादा नीडी कौन है, उसकी तलाश करें। इमाम हसन का दस्तरखान का इतनी मकबूलियत हुई कि तारीख ये कहती है कि एक फकीर आया, आप सुनते ही रहते हैं, उसने न सिर्फ एक लुकमा उसमें लिया, मुंह में लिया, एक लुकमा उसने बैग में डालना शुरू किया। मौला ने फरमाया तुम क्या परेशानी करते, घर को ले जाना चाहते हो, मैं तुमको घर को खाना दूंगा। तो उसने कहा ना घर को नहीं है, मैंने अभी कूफे में एक शख्स को देखा नमाज के बाद वो सूखी रोटी घुटनियों से तोड़ रहा था। उसने कहा तुझे नहीं मालूम, वो मेरा बाबा अली है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं इस्तेहकाक तक पहुंचना और इस्तेहकाक को उस मंजिल तक ले जाना एक कमाल है, एक चैलेंज है, एक ये मसला है। दूसरा मसला जो बहुत अहम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, यानी खुदा ने जो नेमतें दी हैं उनको पूरा तकसीम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। खुदा ने रिस्क सबको दे दिया है, सबका रिस्क है, मगर ये रिस्क बाज लोग छीन रहे हैं। ये जो छीन रहे हैं वो लोग कैसे दूसरे तक पहुंचा सकें, ये चैलेंज है। ये किसने किया, किसी ने अदा नहीं किया सिवाय इस घर के। जॉर्ज जर्दाक क्रिश्चियन रॉइटर है, लेबनान का रहने वाला है, अरबी में एक किताब लिखता है इमाम अली सौ तो अदालतिल इंसानिया, और उर्दू में किताब छप चुकी है इमाम अली अदालत निदाए अदालत इंसानी, फारसी में भी यही नाम है और खूबसूरत किताब है, मैं नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ पढ़ें, और इंग्लिश में भी मौजूद है इमाम अली द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। इस किताब में लिखता है कि एक मर्तबा मौला अमीर अल मोमिनीन कूफे में खड़े होकर के खुतबा देते हुए फरमाते हैं मैं खिलाफत कर रहा हूँ, मैं तुम पर हाकिम हूँ, कोई है तुम में जिसके पास जिसने खाना ना खाया हो। सबों ने कहा या अली आप हुकूमत कर रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, शेर हैं, है कोई जिसके पास लिबास ना हो, सब शेर हैं, सबके पास लिबास है। मौला ने पूछा कोई है जिसके पास घर ना हो, सबों ने कहा या अली हमारे पास सबके पास घर हैं। फिर मौला ने बताया सिस्टम वही है जिसके पास बेसिक नीड्स दिए जाएं, घर भी हो, ग़िज़ा भी हो, लिबास भी हो, अगर वो है तो समझो कामयाब है। बॉर्डर का बढ़ाना बहुत आसान है, अदालत का बढ़ाना बहुत मुश्किल है। पहले अदवार में बॉर्डर बने, अली के दौर में अदालत बटी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो कहता है कि कैसे, आज मालूम है आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंग्लैंड के लिए भी किसी हद तक कहा जाता है सम राइट्स दिए जाते हैं, खुसूसन वेलफेयर सिस्टम उनका बहुत अच्छा कहा जाता है। वेलफेयर सिस्टम यानी लोगों की बहबूदी का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, यानी अगर कोई शख्स जॉब ख़त्म कर लेता है खो लेता है उसके लिए दिया जाता है, अगर वो भी नहीं है फिर भी उसको मदद होती है, इसको कहते हैं वेलफेयर सिस्टम। ये कहता है जॉर्ज जर्दा क्रिश्चियन राइटर मुसन्निफ है मसीही, कहता है कि अली वो पहला शख्स है जिसने सोसाइटी में बगैर डिस्क्रिमिनेशन के, यहूदी हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन, बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जिसने ये बात पेश की, अदालत के जरिए से वेलफेयर सिस्टम को चलाया, वह अली इब्न अबी तालिब है। चुनांचे मौलाए कायनात के दौर में वो एक किस्सा नकल कर रहे थे, जाते थे, एक फकीर सवाल कर रहा था, मौला ने पूछा ये क्यों सवाल कर रहा है, फकीर ने कहा कल तक मैं मेहनत कर रहा था, मेरे पास ताकत नहीं है। मौला ने कहा इसका नाम लेजर में लिखो, इसको वेलफेयर लेने वालों रिसेप्शन जिनके पास मिलता है उसका नाम इसको लिख दो। लोगों ने कहा मौला वो यहूदी है, मौला ने कहा इंसान है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके माना ये हुए कि अगर हकीकत में हम ह्यूमन सोसाइटी को तक पहुंचना चाहते हो, कई सिस्टम है उनमें से वेलफेयर सिस्टम है, वो वेलफेयर सिस्टम सिवा आले मोहम्मद के कोई चला नहीं सकता। दूसरी चीज इमाम हसन ने जो पेश की वो दूसरी चीज है, मौला की जिंदगी में आपने तीन मरतबा, ये भी बता दूं कि इमाम हसन का दस्तरखान किसी बैतुल माल का माल नहीं था, कहाँ से माल था वो आया था, साले गुज़श्ता कि वो मजलिस से मेरी याद रहे हैं, उसमें मैंने इशारा किया था, मैं जरा सा चलती तौर पर सरसरी तौर पर बता दूं आपको, मौला की जिंदगी में, मौला फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे भी दिन गुजरे हैं, एक दिन ऐसा आया कि एक खजूर के टुकड़े हमने घर वाले बांटे हैं, इतनी हालत खराब थी। जब जंगें चल रही थी 8 साल, बहुत इंटेंस जंगें थी उस दौर में, गुर्बत का ये आलम था कि सिर्फ एक रात ऐसी आई, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, एक खजूर था, हमने खजूर के टुकड़े बांट करके सिर्फ जबान भिगाया है, मेरे पास इतनी गुर्बत थी। मौला फरमाते हैं आज मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर बनी हाशिम में तकसीम कर दूं तो कोई गरीब नहीं रहता। मौला ने 25 साल आपने 1000 खजूर के दरख्त लगाए थे, उससे इनकम थी। मौला एकानत ने दुनिया के सामने पेश किया था। ये जो हिस्सा मौला इमाम हसन बांट रहे हैं, किसी के बाप का हिस्सा नहीं है, जो उनको जो हिस्सा मिला था उसकी तकसीम है। किसी का ले करके तकसीम करना और है, अपना तकसीम करना और है। अब आइए, इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में 3 times जो कुछ था सब दे दिया, एक टाइम नहीं 3 times। ये कहते हुए जरा सा मुझे बैलेंस भी करना, कहीं ऐसा ना हो कि कल जोश में आप सब दे दें, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये बहुत अच्छी तरह से देख गौर कीजिए, रसूलुल्लाह के जमाने का एक किस्सा है कि एक अच्छा खासा पैसे वाला मोमिन था, रसूलुल्लाह ने बताया क्या दुनिया यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, क्या ये दुनिया है जिस दिन ना माल काम आएगा, जिस दिन ना औलाद काम आएगी। उसने जो रसूलुल्लाह की जबान से जो सुना, असर इतना किया, उसने अपनी पूरी दौलत को तकसीम कर दिया। जब इंतकाल हो गया, 3rd day उसके बच्चे भीख मांग रहे थे। रसूलुल्लाह को जब इत्तला मिली कि उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर मुझे मालूम होता तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देता था। यानी इस्लाम ने आपको पूरा बांटने का हुक्म नहीं दिया है, इस्लाम ने पूरा सिस्टम बताया है कितना तुमको तकसीम करना है। क्या सिस्टम है? 2 चीजें। मैं जहां जहां सुन रहा, आज जो इस जहमत की इतने दिनों से मुसलसल जो जहमत हो रही है, आज की बहुत ही अहम, खुम्स सिर्फ दौलतमंदों पर वाजिब नहीं है, सब पर वाजिब है, हत्ता ये गरीब पर भी वाजिब है। खुम्स की अहमियत क्या है? एक दिन मुअय्यन करें, उस दिन जो भी बच जाए, अगर ना बचे तो नहीं बचा, अगर बच जाए, अगर 5 रुपये बच गए तो 1 रुपया दे देना जरूरी है, 20%, यानी खुम्स के माने 1/5 आपका देना वाजिब है। अगर शियों में, अगर मकतब अहले बैत में, अली के मानने वालों में, अहले बैत के मानने वालों में खुम्स का सिलसिला मुसलसल शुरू हो जाए और सही तकसीम हो जाए तो कोई गरीब रहने वाला नहीं है। तो इमाम हसन ने अपना सब कुछ दे दिया 3 times। आपको सब कुछ देना नहीं है, कम से कम खुम्स निकालना है जो आप पर वाजिब है, इससे नजात नहीं मिल सकती। यहां तक कि हदीस में है कि अगर आपने खुम्स नहीं निकाला और आपने लिबास खरीद लिया, अगर आपने नमाज पढ़ी तो वह नमाज भी इश्काल है, इसलिए कि वो लिबास आजाद लिबास नहीं है, आपका नहीं है, उसमें किसी का हक बनता है। तो नमाज पढ़ लेना ही कमाल नहीं है, बल्कि नमाज के शराइत के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ला वाजिल फरजहुम, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, व अकीमुस्सलात व, जहां भी कुरान में आया है नमाज के साथ ज़कात आया है। बहुत से लोग आजकल यानी जो कुरान को ऊपर देख करके समझ जाने की कोशिश करते हैं, डीप नहीं जाते, वो समझते हैं कि ज़कात जो है उसी तरह से, ज़कात भी कंडीशनल है। अगर इतने, अगर आप फार्मर हैं, अगर आप किसान हैं, आपके पास इतने गेहूं आता है, इतने गेहूं के बाद इतना मेयार आता है, तो जब इतना हो जाता है तो आपको इतना देना है, मुझे वो तफसील में जाना नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास इतने गाय हैं, इतने आपके पास गोसवन हैं, यानी आपके पास इतने बकरे हैं, उस पर एक निसाब मुय्यन है, निसाब के पूरे होने पर ज़कात वाजिब है। अगर मेरे पास ज़मीन नहीं है, अगर मैं किसान नहीं हूँ, अगर मेरे पास सोने के कॉइन नहीं हैं, अगर मेरे पास चांदी के कॉइन नहीं हैं, मुझ पर ज़कात नहीं है। चुनांचे आपको मालूम है पाकिस्तान में शियों को ज़कात से ये तहरीक निफाज़े फिक्र जाफरिया नतीजा निकला ना भाई, बहुत से लोग अपना पैसा बनने बचाने के लिए शिया बन जाते हैं,
ضرورت پہ شیعہ بننا اور ہے مقابل میں کفر کہنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد. یہ اسٹرگل ہے. اسلام نے کہا زکوٰۃ صرف پیسہ نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مسکرانا بھی زکوٰۃ ہے, یعنی کسی ایسے انسان کے سامنے جب نکلیں جو آپ کو اس کے سامنے کچھ نہیں دے سکتے, صرف مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں, سلام کرنا بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے, خدا نے آپ کو علم دیا ہے, علم کی زکوٰۃ ہے. خدا نے آپ کو ہنر دیا ہے, ہنر کی زکوٰۃ ہے. خدا نے آپ کو دولت دی ہے, دولت کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ صرف پیسہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ مما رزقناکم ينفقون, خدا نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس کو دے دینے کا نام ہے زکوٰۃ. اگر ان اصولوں پر چلیں تو ہم لوگ امام حسن کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں, اگر ان اصولوں پر نہیں چلیں گے تو امام حسن سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. تیسری چیز جو بیان کرنی ہے, امام حسن نے صلح کیوں کی؟ سوال غلط. سوال ہونا چاہیے امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ اس لیے کہ اسلام میں جنگ ہے ہی نہیں. اسلام یعنی پیس. اسلام نے صلح کی دعوت دی ہے. جتنے بھی جنگیں ہیں ابتدائی جنگیں نہیں ہیں. ابتدائی جنگ کے لیے یعنی آفینس کے لیے بہت بڑی کنڈیشنز ہیں, ایک تو پیغمبر ہو, امام موجود ہو, امام کی اجازت سے تھے. لیکن جتنی بھی دفاعی ہیں وہ دفاعی امام یا نائب امام کے حکم سے دی جا سکتے ہیں. اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں, کوئی حملہ کرے تو مجھے دفاع کرنے کا پورا حق اسلام نے دیا ہے. دفاعی جنگ اسلام میں موجود ہے. صلح امام حسن نے کیوں کی, یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سوال کرنا چاہیے جنگ کیوں کی امام حسین نے؟ اس لیے کہ وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جنگ کی جائے. مولا امیر المومنین کی حیات کے دو رخ ہیں, رسول اللہ کی حیات کے دو رخ ہیں. میرے ساتھ اچھی طرح رہیے, نتیجہ نکل رہا ہے. ایک سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ عجل. رسول اللہ کی حیات میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد, اعلان نبوت کتنے سال میں کیا؟ 40 سال میں. کتنے سال مکے میں رہے سرکار؟ 13 سال. اس کے بعد ہجرت کیا 53 ایئرز میں. کتنے دن مدینے میں رہے؟ 10 دن. 10 سال کتنے ہو گئے؟ 23 سال. جملہ 23 سال حیات نبوت ہے, ٹھیک. 13 سال مکے میں پتھر کھائے, زخم کھائے, لوگوں نے کوڑا ڈالا, سارے ظلم کیا, لیکن رسول اللہ نے جنگ نہیں کی. تو معلوم ہوا مکی زندگی کا مظہر ہے امام حسن. امام حسن کو مظہر بنا رہے ہیں رسول اللہ. مظہر یعنی ریفلیکٹر. کس کا؟ مکی زندگی کا. میں دو کو چھوڑ رہا ہوں, ایک ہے حسین, دوسرے ہے ایک ہے حسن, دوسرے ہیں حسین. امام حسن مکی زندگی کو. آئیے, امام رسول اللہ جب مدینے میں گئے تو مدینے میں 8 ایئرز میں, 8 سال میں 86 وارز ہوئے ہیں, مائنر اور میجر وارز مدینے میں. وہ بھی وار مکے والوں نے, کفار قریش نے حملہ کیا تو جواب دیا ہے. چنانچہ سب سے پہلی جنگ کا نام بدر ہے, مجھے جانا نہیں ہے. تو مکے زندگی میں رسول اللہ نے صلح کی, مدینے کی زندگی میں رسول اللہ نے جنگ کی. تو جنگ اور صلح, پہلے صلح کی بعد میں جنگ. حسن پہلے اور حسین بعد میں. پہلے صلح ہے بعد میں جنگ, تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ بالکل وہی رسول اللہ. حیدری. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل. خود مولائے کائنات کی زندگی, مولائے کائنات کی زندگی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک ادوار خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے, 25 سال کا دور ہے. مولا نے جنگ نہیں کی, لیکن جب خلافت اپنے ہاتھ میں آئی, امیر شام کی طرف سے بغاوت آئی, مولا نے جنگ کی. تو معلوم ہے جس طرح رسول اللہ کے دو زندگی کے حصے ہیں, اسی طرح سے علی کے بھی زندگی کے دو حصے ہیں. مولا علی کی زندگی میں بھی صلح ہے, مولا علی کی زندگی میں بھی جنگ ہے. جنگ کب؟ جب شریعت کے اصولوں کو پامال کیا جائے, اس وقت جنگ ہے, ورنہ جنگ نہیں ہے. جنگ ہونا چاہیے حتی باطل. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا خاموش کیوں رہے؟ خاموش رہے غلط ہے. مولا کے احتجاجات ہیں باقاعدہ. مولا نے ایجیٹیٹ جو کیا ہے, خطبے ہیں, मौला ने साबित किया है कि मुझे खुद रसूलुल्लाह ने इमाम बनाया था, खलीफा बनाया था, ये छीन लिया गया, बयान करते थे। लेकिन नहीं चाहते थे मुसलमानों के दरमियान खून बहे, मौला ने इसको रोका है। किस तरह से, मिसाल देता हूं मैं, उसी मिसाल को सामने रखिए। मसलन मौला के खिलाफत के जमाने में दो औरतें आईं, एक ही बच्चा, बहुत पुराना किस्सा है, मैं नतीजा निकालना चाहता हूं। दोनों क्लेम कर रहे हैं मेरा बेटा है। मौला ने कहा कंबर दो को काट दो। मौला काटना चाहते थे ना, मौला देखना चाहते थे कि असल मां कौन है। असल मां जो हकीकी मां होगी वो बच्चे को दुश्मन के हाथ में सही दे देगी, बच्चे की जिंदगी चाहेगी। मौला एक कायनात इस्लाम का असल दर्द रखते थे, गैर के हाथ में रहे रहे बाकी रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जल। अब आइए, मौला ने जंग क्यों की? इसलिए कि उसूल दीन मिसमार हो रहे थे, असल जो सिस्टम ऑफ इस्लाम खत्म हो रहा था। इमाम हसन के जमाने में भी सुलह पे जो मजबूर हुए हैं, नंबर वन जितने फॉलोअर्स थे वो सब के सब चक्कर में आ गए। इसीलिए बहुत जल्दी बहुत जुमला करना चाहता हूं, इस जुमले को बहुत अच्छी तरह से याद रखें। उम्मीद है कि जहां जहां तक सुन रहे हैं, आजकल ये कहा जा रहा है कि किसी दो आयतुल्लाह ने कहा है कि आप दुआ पढ़ें इमाम जमाना की, दुआ तालीम है, दुआ बगैर अमल के बेकार है। परवरदिगारा मुझे रिज्क दे, रिज्क दे, या रज़ाको या रज़ाको, 100,000 मरतबा घर में बैठ के पढ़ूं तो बीवी कहेगी जाओ काम करो पहले, बाद में या रज़ा क्यों कहो। इसी तरह इमाम को भी सिर्फ याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो उसूल मुय्यन किए हैं उन उसूलों पे चलना जरूर है। विलायत फकी की बात को ना मानकर दुआ करने से कामयाबी होने वाली नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाली मोहम्मद व अज्जल फराजाम, बहुत अच्छी तरह से तरसलावात अल्लाहुम्मा सल्ल अला आली मोहम्मद। अभी हाल ही में एक मूवी निकली है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, जिसमें मुख्तारनामा पेश किया गया। उसके देखने के बाद मैंने गिरिया किया है, बहुत परेशान है। यानी असल में जब इम्तिहान होता है वहां पता चलता है कि हम कैसे शिया हैं। शियत का दावा करना आसान है, शिया बनना मुश्किल है। मौला के पास एक शख्स आया छठे इमाम के पास, मौला बहुत मोहब्बत है आपसे, आई लव यू सो मच। मौला ने कहा कल से मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई आए मेरे पास, बाकरी साहब बहुत अच्छी मजलिस मजा आ रहा है, आपको जरा दिल चाह रहा है आपसे मोहब्बत करें, मैं कल से परेशानी होगी। ये क्या शख्स है, अभी आए थे मोहब्बत को बताने के लिए, ये कह रहा है बद्दुआ दे रहा है। मौला ने फरमाया कि अगर हमसे मोहब्बत करना है इम्तिहान शुरू होगा। अमरोना साबन मुस्तासब, ये मौसम का कौल है, हमारा हुक्म मुश्किल है, मुश्किल को मोल लेना है। बात समझिए अच्छी तरह से, अमरोना साबन मुस्तासब, कुछ और बन के जीजिए बहुत आसान है, मजहब ना रखिए बहुत आसान है, हैव फन। लेकिन जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा आप पे पाबंदी आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया फिर भी मुमकिन है आसान, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और परेशानी में आ गए, अगर आपने अली अलीउल्लाह कहा और एक सर्कल में आ गए। यहां दस्तोपा कटेंगे, यहां जान पर बनेगी, ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली।
تر سلاوات اللہ مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری کون امام بنے؟ امام حسن. صلح کس سے ہوئی؟ امیر شام سے. کب تک صلح رہی؟ 50 ہجری تک. کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی. کس نے امامت ہاتھ میں لی؟ امام حسین نے. کب تک امام حسین کے ہاتھ میں امامت رہی؟ 61 ہجری کا اوائل. کتنے سال؟ 10 سال. تو جس طرح امام حسن نے صلح کی 10 سال، اسی طرح 10 سال امام حسین نے بھی کی. سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے امام حسن نے کی ہے اسی طرح سے امام حسن. لیکن جب چہرہ ابھر کر آ گیا کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہتا تھا، علل اعلان شراب پیتا تھا، قتل عام کرتا تھا، امام نے کہا اب شریعت پامال ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ اب حق پر عمل نہیں ہوتا، امر بالمعروف نہیں ہوتا، نہیں عن المنکر نہیں ہوتا، بس مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے. اس لیے امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے اپنے پورے ساتھیوں کو بتا دیا، وہاں کامیاب ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا درد یہی ہے کہ جس دین کو نانا نے محنت سے پالا تھا اس دین کو پامال کر دیا گیا. میں کہا کرتا ہوں، بہت اچھی طرح سے سمجھیے، سرکار کی گود میں دو چیزیں پلی، ایک دین پلا، ایک محافظ دین پلے. دین جوان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور محافظین بھی جوان ہوئے. سرکار کے جانے کے بعد دین کمزور ہوا، باڈی، آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں، سینہ بھی کمزور ہو گیا، بازو بھی کمزور ہو گئے، گلا بھی کمزور ہو گیا. امام حسین نے کمر ہمت باندھی، اے میرے نانا کے دین، گھبرانا نہیں، اگر تیری کمر کمزور ہے، اگر تیرے بازو کمزور ہیں، اگر تیرے جسم میں خون نہیں ہے، میں حبیب کا خون دے رہا ہوں، مسلم کا خون دے رہا ہوں. اگر تیری آنکھیں کمزور ہیں، اون محمد کو دے رہا ہوں. اگر تیرا سینہ کمزور ہے، علی اکبر کو دے رہا ہوں. اگر تیرے بازو کمزور ہیں، عباس کو دے رہا ہوں. اگر تو مکمر تیرا وجود کمزور ہے، میں خود اپنا گلا کٹوا رہا ہوں تاکہ تو بچ جائے. ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیسیوف خدینی، اگر دین میرے نانا کا میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا، تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. محرم کا عشرا تیزی سے ختم ہو رہا ہے، حسین کبھی جدا نہیں ہوتے، لیکن یہ جو الیکٹریسٹی ہے، یہ جو پاور ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، اس کو ختم ہونے نہیں دینا ہے. اس لیے کہ یہ جذبہ حسینی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. تو علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر وہ ہیں جو صورت و سیرت و رفتار و کردار میں ہوبہو رسول اللہ جیسے تھے. تاریخ میں ہے کہ علی اکبر کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب سرحائے شعدا کوفے کے بازار میں جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک عورت علی اکبر کے نیزے کے سامنے آ گئی، گود کو پھیلایا، خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے. اتنا خوبصورت جوان اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی ماں زندہ رہے. جو دشمن کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہو، جس نے 18 سال پالا ہو، اس کی نگاہ میں کتنا خوبصورت تھا ہوگا علی اکبر، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ روایت میں حمید ابن مسلم کہتا ہے، جو کوئی شہید باہر نکلتا تھا، میں غور سے دیکھتا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے. جب علی اکبر نکلنے لگے
तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे भरे घर का घर से जवान की लाश निकल रही है। सारी बीबियां गिरिया फरमा रही थी, हर तरफ से रोने की आवाज बुलंद थी। अली अकबर बाबा के पास आए, बाबा जाने की इजाजत दीजिए। इमाम, मुझे तफसील में जाना नहीं है, मैं मसाइब अली अकबर को सिर्फ साल में सिर्फ इसी जमाने में पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ नहीं पाता। अली अकबर के मसाइब इतने कवी हैं, मासूम ने फरमाया कि जब कभी अली अकबर के मसाइब सुनो ऐसे रो जैसे माँ अपने बेटे को खो चुकी है। इसलिए कि अली अकबर का मसला है, जवान बेटे का मसला है। तारीख ये कहती है कि इमाम हुसैन ने सर से पैर तक देखा, बेटा तुम जा रहे हो? इजाजत की बहुत इसरार पर इमाम ने अमामा बांधा, अबा उड़ाई, तलवार को लगाया, बेटा घोड़े पर सवार जाओ। तारीख ये कहती है जैसे ही अली अकबर ने एड़ दी, हाथों को उठाया, परवर अल्लाहुम्मा शहद कद बरज़ा इलाहा उलाइल कौम खलकन व खुलकन व मंतकन बे रसूलक, परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब मुझसे वो मेरा बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, किरदार में हूबहू मेरे नाना जैसा था। परवरदिगार जब कभी मैं नाना की ज़ियादत करना चाहता था, मैं इस मेरे बेटे को देख लेता था। खुदा आपको सलामत रखे। यहां पर है या नहीं मालूम है, कश्मीर में एक मस्जिद है जिसका नाम है आसारे मुबारक। आसारे मुबारक यानी ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह की रीशे मुबारक का एक बाल वहां मौजूद है। साल में एक मर्तबा देखने के लिए हजारों का मजमा 1400 साल बाद देखने को आता है, इसलिए कि वो आसार मुबारक के सरकार हैं। ए मुसलमानों, मुकम्मल आसार रसूल आ रहा है, जिसका चेहरा रसूलुल्लाह जैसा है, जिसकी आंखें रसूलुल्लाह जैसी हैं, जिसका वजूद रसूलुल्लाह जैसा है। मैं तो कहा करता हूँ करबला में इमाम हुसैन ने कुछ कुर्बानियाँ दी और किरदार फौज यजीद को उभारा। एक एक कुर्बानी को देते थे, एक एक किरदार को उभारते थे। अली अकबर को भेज करके साबित कर दिया इनमें कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है। अली के हूबहू अली की शबी अब्बास को भेज करके बता दिया कोई अली का पहचानने वाला इस फौज में नहीं है। अब यह देखना था कि आया इनमें कोई इंसान भी है कि नहीं है। अली असगर को ला के पेश के बताया कि इनमें कोई इंसान भी नहीं है। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए। शायद बीबी कह रही हो अली अकबर के मसाइब हैं। खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। खुदा ये अशरा मुहर्रम का मोमिनीन जवानों की सलामती के साथ गुजरे। खुदा दुश्मनों को हिदायत दे। बरादरान अजीज, अली अकबर आगे बढ़े थे, बड़ी खुशी से घोड़े को एड़ दी थी, एक मर्तबा आवाज आ रही थी पीछे से, वलदी महलन महला। एक मर्तबा पलट कर अली अकबर ने देखा, क्या देखा, ज़ईफ बाप कमर को थामे हुए पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा, बाबा के पास आए। बाबा आपने इजाजत दे दी थी, आपको पीछे आने की जरूरत नहीं थी, आप क्यों तशरीफ ला रहे हैं? दो जुमले कहे। पहला जुमला, ऐ काश तुम साहिबे औलाद होते, काश तुमको मालूम होता कि बाप के दिल की आग क्या है। दूसरा जुमला, अली अकबर तुम नहीं जा रहे हो, मेरा कलेजा जा रहा है। तुम नहीं जा रहे हो मेरे लाल, मेरा वजूद जा रहा है। अली अकबर मैदान में आए, मेरे पास जंग का मौका नहीं है। तारीख ये कहती है तारुफ करवाया मैं कौन हूँ, और जंग हुई घमसान की जंग हुई, यहाँ तक के सिनान ने अली अकबर के सीने में बर्ची लगाई, संभल ना सके। जुमला कहा अलैकुम मिन्नी अस्सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हमीद कहता है कि मैंने देखा हुसैन करबला की रेत पर गिरे, उठते जाते थे, गिरते जाते थे, पुकारते थे पिदर को, पिसर नहीं आता, जिगर में दर्द है, लखते जिगर नहीं आता। 70 मर्तबा हुसैन उठे, उस तरह से जिस तरह से दर्द उठता है, इस तरह से गिरे जिस तरह से आंसू गिरते हैं, पुकारते थे बेटा ऐ ना अंत या अली, मेरे लाल कहाँ हो मेरे लाल, कहते थे अलग दुनिया बाद कलाफा, अब तेरे बाद जिंदगी का मजा करो। मेरी उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को शहादत के तौर पर पेश किया है सलाम करता हूं। आओ अली अकबर के साथ अली अकबर की मां का पुरसा लो। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन ढूंढते जाते थे, जो कोई पूछता था क्या हुसैन ढूंढते हैं तो रो के कहते थे आंखों का नूर, आंखों का नूर ढूंढते हैं। ऐन अंत या अली, मेरे अली तुम कहाँ हो, पुकारो मेरे लाल। लुटी हुई वो कमाई बसत तलाश मिली, हुसैन अली अकबर तक पहुंच गए, क्या किया, फवद खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने चेहरे को अली अकबर के चेहरे पे लगाया, बेटा तेरा बाबा आ गया, बेटा उठो मेरे लाल। बेटा भी मारिफत वाला बेटा, अली अकबर भी बा मारिफत। तारीख कहती है कि अली अकबर समझ गए कि ज़ईब बाप आया है, रीछ सफेद हो चुकी है, कोहनियों से खून जारी है, तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। एक जुमला कहा, बाबा घबराइए नहीं, देखिए दादा आ गए हैं, देखिए नाना आ गए हैं, देखिए दादी आ गए हैं, सब कह रहे हैं हुसैन थोड़ी ही देर में तुम भी आने वाले। अजरकुम अल्लाह, इमाम हुसैन का हाथ अली अकबर के सीने पर था। अली अकबर ने कहा, बाबा जरा सीने से हाथ हटा लीजिए। कब मेरे लाल क्या बात है, बाबा बर्ची की हनी है। इमाम हुसैन ने आस्तीन उल्टी, नैजे की अनी को हाथ में लिया। ये वही मौका था जब अली देख रहे थे, फातिमा देख रही थी, अली आगे बढ़े, फातिमा के चेहरे को पलटाया, फातिमा उधर न देखा। बस एक ही जुमले के लिए मैं जहमत दे रहा हूं। आपने देखा हो खुदा किसी जवान की मैयत को ना दिखाए, अगर किसी का जवान मर जाता है बाप को लोग थामे हुए रहते हैं, बाप चल नहीं पाता, उसकी कमर टूट पड़ी होती है, अरे जवान की लाश है, हुसैन अली अकबर की लाश को उठाना चाहते हैं। जब सीने की तरफ से उठाते हैं पैर खत देते हैं, जब पैर की तरफ से उठाते हैं सर खत देता है। हुसैन ने पैर इस तरफ रखा, पैर दूसरी तरफ रखा, सीने से सीना मिलाया, उठाया अली अकबर की लाश को। या अली, जब करीब पहुंचे आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों, आओ अली अकबर की लाश उठ। मातम हुसैन या हुसैन।